मनोकार मंत्र की जाप के रात को 11 बजे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? यदि दिन भर व्यस्त रहे तो वाह, आपकी व्यस्तता की बलिहारी। हाँ, कि आपको कम से कम रात 11 बजे तो समय मिला, चलो कम से कम इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप 11 बजे और कम से कम 11 बजे सोने से पहले और जरूर नमोकार मंत्र पढ़ें। पंच नमस्कार मंत्र एक ऐसा मंत्र है, उसमें लिखा है कि भोयन सोयन पयान पच्चयान, भोजन करते नहीं करते, आते जाते उठते बैठते चलते फिरते, हर अवस्था में जो पंच नमस्कार का स्मरण करता है वो अपने कर्मों की असंख्यात गुनी निर्जरा कर लेता है। इसलिए भय नहीं करना चाहिए, हर अवस्था में आप जो है नमोकार मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं। कभी कभी जाप देना भूल जाए तो प्रायश्चित क्या लेना चाहिए, जाप वही और दे लेना चाहिए, जाप भूल गए तो एक जाप और एक्स्ट्रा दो, वही उसका प्रायश्चित है और कोई विशेष नहीं। आपने पहले एक उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति सिर पर बोझा लिए ट्रेन में सफर कर रहा था, एक आदमी ने बोझा नीचे रखने को कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि टिकट मैंने अपने ली है, बोझे की तो नहीं ली है, तो ट्रेन पर एक्स्ट्रा लोड क्यों डालूं, इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि सही भाव क्या। अरे वाह। ठीक है, कम से कम आपने पूछ तो लिया, आपके समझ में नहीं आया, कई लोगों के और समझ में नहीं आया होगा, लेकिन वो इस वजह से कि कोई ये ना समझे कि इनको इतनी सी चीज समझ में नहीं आई तो इनने पूछा ही नहीं होगा, पर आपने पूछने की हिम्मत तो करी कि ये उदाहरण हमको समझ में नहीं आया। देखो भाई, ऐसा है कि ये एक तरह का इसमें भाव क्या छिपा हुआ है कि हम संसार में जो भी कार्य करते हैं वो सहज रूप से होते चले जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं हमने किया। जब काम बन जाता है तो उसका श्रेय लेने का मन होता है, और जब काम बिगड़ जाता है तो संक्लेश होता है हमारे लिए, है? मैंने किया, मैं सिर्फ निमित्त हूं, मेरे निमित्त से हो रहा है ये कार्य, या अच्छा भी हुआ तो भी मेरे निमित्त से हो गया बस। पर कार्य मेरे जैसे घड़ा बनाए कुंभकार और अहंकार करे कि मैंने बनाया, तो धीरे से जो है मिट्टी क्या कहेगी कि मेरे बिना बन सकता था, ऐसे हाथ ऐसे करने से घड़ा बन जाएगा, तुमने बनाया, तुम बना कर सकते बिना मिट्टी के, तो वह बात सही है क्योंकि मिट्टी से बना घड़ा। अच्छा, तो मिट्टी अहंकार कर ले कि मैंने मेरे द्वारा घड़ा बना, तो फिर पड़ी थी वो तो वहां नदी के किनारे, उसमें बन जाना चाहिए था घड़ा, मिट्टी की पड़ी पड़ी उसमें घड़ा बन सकता क्या? नहीं, मिट्टी में पड़े पड़े घड़ा भी नहीं बन सकता, कुंभकार के निमित्त से बना, लेकिन कुंभकार बिना मिट्टी के घड़ा भी नहीं बना सकता। ऐसे तो हर कोई अपना दावा कर सकता है, गधा भी अपना दावा कर सकता कि मैं लेके आया था पीठ पर मिट्टी, और वो पानी भी कहेगा कि मेरे बिना कैसे बनी। कितनी सारी चीजें थी जिनके द्वारा बनी, जैसे कि रोटी बनती है तो रोटी बनाने वाला ये कहे कि मैंने बनाई, चकला बेलन कहे कि मैंने बनाई, मेरे बिना कैसे बनती, अग्नि कहे कि मेरे पे पकती नहीं तो कैसे खाने लायक बनती। सब लोग अपना दावा कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो रोटी बनी काहे से है, आटे से बनी हुई। इस तरह हर कार्य जो है वो अपने जैसी उपादान में योग्यता होती वैसा होता है, हम तो सिर्फ जो है उसमें सहयोगी बनते हैं और उसी का अहंकार कर लेते हैं कि मैंने किया। तो इसलिए ये उदाहरण दिया था कि भैया जैसे वो व्यक्ति इस भ्रम में कि वो ट्रेन में बोझा नहीं रखे है, वो तो अपने सिर पे बोझा रखे है, ऐसे ही हम लोग भी जो है कार्य करते तो है नहीं, कार्य तो अपने आप होता रहता है, हम जो है उसका बोझा अपने कर्म का बोझा सिर पे डाले रहते हैं कि मैंने किया है। इस अहंकार को छोड़ देना चाहिए, ये उसमें भाव था। मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत कोशिश की है कि समझ में आ जाए, नहीं आया हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं कि मैं अभी भी नहीं समझ में नहीं आया, इसमें कोई बात नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम आपको समझाते रहेंगे, उसमें क्या समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन मोह महारिपु को जीतने के लिए सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन सा है, ये शास्त्रीय भाषा क्यों बोल रहे हैं? भारी शास्त्रीय भाषा है, मोह महारिपु को जीतने के लिए। ये असल में क्या है ना, क्वेश्चन आंसर ऐसे ही आते हैं आजकल वो प्रतियोगिता प्रश्न उत्तर की, उसमें ऐसा रहता है किताब में से मुझे कुछ बनाए हैं प्रश्न। देखो भाई, मोह के जीतने के लिए क्या है, मोह को नष्ट करने के लिए क्या है, तो अपन ने कई बार चर्चा करी कि अरहंत भगवान के प्रति हमारा जो अनुराग है, उनकी जो भक्ति है, वो हमारे मोह को कम करती है। देखो, अपनी वास्तविकता का हमें बोध ना हो और हम भ्रम में जी रहे हों और कोई हमें सच्चाई बता देवे, तो क्या होता? भ्रम हट जाता कि नहीं हट जाता? कौन हमें हमारी सच्चाई बताएगा? अरंत भगवान हमें सच्चाई बता देते हैं कि तुम्हारी आत्मा का स्वभाव ऐसा है और तुम व्यर्थ ही जो है भ्रम में जी रहे हो। तो फिर वो अरंत भगवान के प्रति जो हमारा अनुराग या हमारी जो भक्ति है, वो मोह को नष्ट करने वाली है। ऐसा ग्रंथों में आता है, अपन अपने जीवन में भी देखते हैं। वास्तविकता मालूम पड़ जाए तो भ्रम टूट जाता है। कैसे? एक सेठ जी थे, तो वो रास्ते से रिक्शे से चले जा रहे थे, अचानक उनको शोरगुल सुनाई पड़ा, कह रहे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो वो अपने रिक्शे से उतरे और देखने गए कि क्या हो गया, किसका एक्सीडेंट हो गया। तो थोड़े दूर से उन्होंने देखा कि एक्सीडेंट तो हुआ और कोई पड़ा हुआ है, और गौर से देखा उन्होंने तो उन्हें लगा कि मेरा बेटा है, उसका हुआ एक्सीडेंट। जैसे ही उनको ये लगा कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, वो फौरन जो है मूर्छित होकर वहीं गिर गए। पहले सुना है मैंने ये है? अब क्या करें? तो वहीं पर उनका जो एक दोस्त था, वो भी वहीं पर आया। उसने देखा कि एक्सीडेंट तो हुआ है सो ठीक है, लेकिन ये सेठ जी को क्या हो गया? उसने सेठ जी के पास पहुंच करके देखा तो बेहोश थे, पर वहां से जहां सेठ जी खड़े थे वहीं से उसने उस एक्सीडेंट की जगह को देखा, तो उसे भी एक बार भ्रम हुआ कि अरे ये तो मेरा मित्र है, उसका एक्सीडेंट हुआ। अब उसको सारी बात समझ में आ गई कि सेठ जी ये समझ करके कि मेरा बेटा है, क्योंकि वो तो मेरा मित्र, उसका मित्र था, उस लड़के का मित्र था, उसने भी पास जाके देख लिया था कि अपना मित्र वो नहीं है, ये तो लगता बिल्कुल वैसे ही है जो कहते हैं कि यही होना चाहिए। बोले ऐसे ही जैसे मुझे पहले भ्रम हुआ था कि मेरा मित्र है एक्सीडेंट हुआ, ऐसे ही उनको सेठ जी को भ्रम हो गया कि मेरा बेटा है, लगते ही रहा। तो इनको होश में लाने से कोई फायदा नहीं, ये एकदम आएंगे भी नहीं, आएंगे भी तो फिर से गश्त खा के गिर जाएंगे। इससे बेहतर है कि फोन करो, बेटे को बुलाओ। बेटे को बुला लिया और बेटे को सामने खड़े करके इनको जगाया। तो जैसे ही जो है होश में आके उनने कहा तुम्हारा बेटा तो ये खड़ा हुआ है, तुमने कहा रही और बस ठीक हो गए वो, बताइए। और पहले क्या हुए थे? मूर्छित, मुक्त, मोह की वजह से मूर्छित हो गए थे। ऐसे ही जो है हमें हमारे स्वरूप का भान नहीं होने पर, वास्तविकता का भान नहीं होने पर, हम भी जो है संसार में मोह से युक्त हो जाते हैं। जीवन मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। वो तो मात्र ड्रेस और एड्रेस बदलना है, आचार्य महाराज का कथन है ये, आपने नीचे लिख ही दिया, इसका आशय स्पष्ट करिएगा। देखो भाई, जब भी कोई जीव मरण को प्राप्त होता है तो सिर्फ एक अरंत भगवान है जो मरण करने, जिनका मरण निर्वाण कहलाता है, जिसके बाद उन्हें जन्म नहीं लेना पड़ता। वरना तो इस संसार में जो भी जीव मृत्यु को प्राप्त होता है उसको जन्म लेना ही पड़ता, और जन्म लिया तो क्या हुआ? वो पुराने वाला शरीर, वो जो ड्रेस थी, शरीर तो एक तरह से ड्रेस है, हैं? और हम किसी के पिता हैं, किसी की माँ हैं, किसी के भाई हैं, ये सब हमारा एड्रेस है, या हमारा अपना नाम हमारा एड्रेस रहता है। तो दोनों चीज बदल जाती कि नहीं? हमारा ये शरीर ही बदल जाएगा और हम जो पहले थे वो भी अब नहीं रहे। हालांकि जी वही है, लेकिन अब वैसा कोई नहीं पहचानेगा। अगर आकर के दूसरी जगह जन्म लेकर के और कोई आ जाए कि हम आपके बेटे रहे हैं पहले, तो अपन ऐसे थोड़ी विश्वास कर लेंगे एकदम। फिर वो अपना सब सुनाएगा कि पूर्व जन्म में हम ऐसे ऐसे थे, तो फिर भी विश्वास कर लेंगे। वरना नहीं होता विश्वास, तो हमारा, क्योंकि हमारा स्वरूप ही बदल गया, हमारा माने बाह्य रूप भी बदल गया और हमारा एड्रेस माने हमारी जो पहचान थी वो भी बदल गई। तो रूप और पहचान दोनों बदल जाती है। आचार्य श्री कहना चाह रहे हैं कि ड्रेस यानी हमारा बाह्य रूप आकृति, और एड्रेस यानी हमारी पहचान, जिससे हम पहचाने जाते थे कि ये उनके पिताजी हैं या उनके ये भाई हैं, उनके मित्र हैं, वो भी अब नहीं रहा। तो दोनों चीज बदल गई, ड्रेस और एड्रेस, यही भाई इसका अर्थ है मेरे ख्याल से। आचार्य गुरुवर विद्या सर्व। क्या संतोषी व्यक्ति ही सुखी रह सकता है? इससे ऐसा लगता है कि प्रश्नकर्ता के मन में दूसरा भाव भी है कि असंतोषी व्यक्ति भी सुखी रह सकता है। अच्छा, संतोष किसे कहते हैं? जो चीज प्राप्त हो जाए उसमें वो सुख माने, इसी का नाम तो संतोष है। और जो चीज प्राप्त नहीं है उसको लेकर के दुखी ना हो, इसका भी नाम संतोष है। जो चीज प्राप्त है उसमें आनंदित हो रहा है,
आनंदित वही हो सकता है जो संतोष धारण करेगा, नहीं तो आनंदित हो ही नहीं सकता वो। तो अगर वो जो चीज प्राप्त है उसमें सुखी है और जो प्राप्त नहीं है उसके लिए दुखी नहीं है अगर, तभी वो वास्तव में संतोषी कहलाएगा। और ऐसा संतोषी जीव ही सुखी हो सकता है। मैं जब इस प्रश्न को पढ़ रहा था तो जो एक पहले लिखा हुआ था वो मुझे ध्यान आ गया, व्यक्ति अशांत है, दुखी है, इसका कारण ये नहीं है कि वो शरीर से अस्वस्थ है। यदि यही कारण होता तो अनेक लोग शरीर से स्वस्थ हैं, उनको सुखी होना चाहिए था। व्यक्ति अशांत है, दुखी है, इसका कारण ये नहीं है कि उसके पास परिवार या अनुकूल परिवार नहीं है। अनेक लोगों के परिवार हैं और जैसा वे चाहते हैं वैसा परिवार है, फिर भी वे सुखी नहीं है, अशांत हैं। व्यक्ति अशांत है, इसका कारण यह भी नहीं हो सकता कि उसके पास आजीविका का कोई अच्छा साधन नहीं है। अगर यही कारण होता तो अनेक लोगों के पास जीवन यापन के पर्याप्त साधन है, फिर भी वे सुखी नहीं है और अशांत है। व्यक्ति अशांत है, इसका कारण यह भी नहीं हो सकता कि उसके पास आधुनिक सुख सुविधा के साधन नहीं है। अगर यही कारण होता तो अनेकों लोगों के पास सुविधापूर्ण प्रचुर आधुनिक साधन है, पर फिर भी वे सुखी नहीं है, अशांत है। व्यक्ति अशांत है, इसका कारण यह भी नहीं हो सकता कि उसके पास पद या अधिकार नहीं है। यदि यही कारण होता तो अनेक व्यक्ति विशिष्ट पदों पर बैठे हैं, पर फिर भी वे दुखी हैं और अशांत हैं। व्यक्ति अशांत है, इसका एकमात्र कारण है असंतोष। अगर व्यक्ति अशांत है या दुखी है तो उसका एकमात्र कारण है कि वो असंतुष्ट है अपने जीवन से, इसलिए दुखी है। और जो व्यक्ति संतुष्ट होगा वही व्यक्ति सुखी। इसलिए इनके प्रश्न का जवाब यही हुआ कि हाँ भाई, संतोषी व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। असंतोषी व्यक्ति कभी कितनी भी बाह्य सामग्री इकट्ठी कर ले, लेकिन आंतरिक सुख या शांति उसे प्राप्त नहीं हो पाई। आचार्य महाराज के निम्न कथन का भाव स्पष्ट करें कि अज्ञानता की धरती पर ही राग द्वेष की खेती हो रही है। अपने यहां पर कषायों को कृषि विलेख ने इस शब्द से व्याख्यायित करते हुए आचार्यों ने लिखा है कि जैसे खेत में किसान खेती करता है और फसल उगाता है, ऐसे ये कर्म है। ये कर्म जो है काहे की फसल है, ये कषायों के द्वारा की गई खेती की फसल है। कषाय जीव के नाना प्रकार के भाव उत्पन्न करके और विभिन्न प्रकार के कर्म जो कि सुख दुख देने वाले हैं, उन सुख दुख रूप कर्मों की फसल काटती है। कौन काटती? कषाय जो है। तो देखिएगा, अज्ञानता इस धरती पर राग द्वेष की खेती करती है, ऐसा कह लीजिएगा, या कि दूसरे तरह से कह लें कि जो भी हमारे अंदर राग द्वेष के परिणाम होते हैं वे सब परिणाम काहे से होते हैं? हमारी अपनी अज्ञानता की वजह से उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति को अगर ज्ञान हो जाए तो वो राग द्वेष क्यों करेगा? कोई ऐसे उदाहरण ले लें अपन, पिछले बार भी अपन ने चर्चा की थी, तो यही कि अगर हमें सही बात मालूम पड़ जाए, हमें ठीक ठीक ज्ञान हो जाए, तो फिर बहुत सारे भ्रम अलग हो जाते हैं, फिर हमारे अंदर राग द्वेष अपने आप समाप्त हो जाता। वो सेठ जी का उदाहरण मैंने आपको दिया ही था। ऐसे ये देख लें कि कोई व्यक्ति जो है एक कमरे में बंद है और उसको दरवाजा नहीं मालूम कि दरवाजा कहाँ से है, और अंधेरा बहुत है, और वो इधर उधर टकराता है, दुखी हो रहा है, थोड़ी देर में ऐसा विचार करता है कि अरे किसने मुझे इधर बंद कर दिया। इस तरह उसके अंदर घृणा है, द्वेष है, राग भाव, सब प्रकार के भाव चल रहे हैं। और अगर थोड़ी सी रोशनी हो जाए, जरा सी रोशनी चमक करके, और फिर भले अंधेरा हो जाए तो इतनी चमक में उसने देख लिया कि दरवाजा तो उधर है, और फिर उससे आराम से वो फिर जो है उस कमरे में रहकर उसको कोई आकुलता कुछ भी नहीं होती है। तब ज्ञान हो जाने से जो है फिर हम धीरे धीरे अपने राग द्वेष को कम करते हैं। इसीलिए तो कसौटी दी हुई है कि जैन रागा विरज्यज्य, जैन मित्ती पभासेज्य, जैन तत्वम विबुज्यज्य, तम नानम जिन शासने। जिनेन्द्र भगवान के शासन में तो ज्ञान उसे ही कहते हैं जिससे राग द्वेष की कमी हो, जिससे प्राणी मात्र के प्रति मैत्री हो, और जिससे आत्म तत्व का बोध हो, वही ज्ञान वास्तव में है। ऐसा ज्ञान जिससे राग द्वेष की कमी नहीं हो रही तो क्या काम का, बल्कि राग द्वेष और बढ़ने लगा। एक बार एक ट्रेन में दो लोग यात्रा कर रहे थे, दोनों में धीरे धीरे अच्छी मैत्री हो गई, दोनों एक दूसरे से बढ़िया बातचीत करने लगे कि चलो रास्ता भी कटेगा और अपन अच्छे मित्र हो गए। शाम को भोजन करने का समय आया तो फिर जो है उनके मन में एक दूसरे के विचार आना शुरू हुआ, पूछ तो लें कि कौन सी जाति के हो। अभी ज्ञान नहीं था कि कौन कौन है, है? फिर उसके बाद जब भोजन करने की बारी आई तो पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा भाई हम तो मुसलमान हैं, और उन्होंने कहा हम तो हिंदू हैं। तो कहने लगे ठीक है, फिर अपना उन्ने डब्बा निकाला, अपना उन्ने डब्बा निकाला, दो ही तरफ की तरह एक दूसरे की तरफ पीठ करी और अपना भोजन शुरू कर दिया है। अभी तो जो है ज्ञान नहीं था तो अच्छी जो है बात कर रहे थे सब कुछ। लौकिक ज्ञान के साथ ऐसी घटना हो सकती है कि ज्ञान होने पर इस संसार में अपन को ऐसा लगेगा कि नहीं, जितना आप जितना चीजों को जानते जाएंगे उतना राग द्वेष बढ़ता जाएगा, ये ध्यान रखना। ऐसा लगेगा अपने को नहीं, आप तो कह रहे थे कि ज्ञान बढ़ेगा तो राग द्वेष कम होना चाहिए, लेकिन यहां तो उल्टा ही है। तो लौकिक ज्ञान जितना बढ़ेगा उतना राग द्वेष, जितना हम चीजों की जानकारी प्राप्त करेंगे, ये चीज कैसी है, ये चीज कैसी है, अरे ये भी हमको चाहिए, ये भी हमको चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये क्या है, अपना और पराया करेंगे। जितना लौकिक ज्ञान बढ़ता जाता है उतना राग द्वेष बढ़ता जाता, और जितना परमार्थ का ज्ञान बढ़ता है उतना राग द्वेष कम होता जाता, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर अज्ञान किसे कहा है, अज्ञान वो सब है जिससे राग द्वेष हो, लौकिक ज्ञान भी अज्ञान है। यहां पर विशेष रूप से जिसको आत्मज्ञान नहीं है वही राग द्वेष करेगा। तो इसका आशय आचार्य महाराज का यह है कि जिस व्यक्ति के अभी भावों की भूमि में, भावों की तो जमीन हो गई, और उस भावों की जमीन में अभी अज्ञान भाव बैठा है, तो वो अज्ञान भाव उस भूमि में किस चीज की खेती करेगा, राग द्वेष की खेती करेगा। तो कह रहे हैं कि राग द्वेष की खेती ही करता है। कृपया इस कथन का इसको स्पष्ट करिएगा, ये तो बहुत सामान्य सा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये तो अपन हमेशा जो है देखते हैं कि कई बार अपने अंदर अच्छा काम करने की सामर्थ होती है, लेकिन कोई हमको प्रेरित करने वाला नहीं मिलता है, तो हमारा मन जो है वैसे ही बुझा बुझाता रहता है, और अपन सोचते हैं कि अरे अब रहने दो, क्या करना अपने को। और अगर ऐसा लगने लगे कि नहीं इसके करने से और भी लोगों को फायदा मिलेगा और मुझे खुद भी फायदा मिलेगा, तो हम कितनी जल्दी उस काम को, जिस काम को हम नहीं भी करना चाहते हैं उसको भी हम करने की सामर्थ्य आ जाती है। देखो और दूर मत जाओ, सुकमाल मुनि महाराज जी का उदाहरण देख लो। जब तक उनके अंदर मन हारा हुआ था, है? मन एक तरह से मन में उतनी दृढ़ता नहीं थी, तब तक क्या था कि थोड़ी सी धूप लग जाए तो वो कुंभला जाए उनका शरीर, इतना इतना कोमल परिणाम माने शरीर हो गया था उनका कि सूर्य की रोशनी में नहीं निकल पाते थे, सरसों के दाने चुभते थे, और चावल खाते थे तो कमल के पत्र पर बने हुए जो चावल हैं वो ही खाते थे, सामान्य चावल तो वो खा ही नहीं पाते थे, इतना शरीर के प्रति उनके मन में वो था, और मन में दृढ़ता नहीं थी कि मैं इन सब चीजों को छोड़ सकता हूं। और जिस दिन जो है वैराग उपज गया तब फिर, और घर से निकल गए, पैरों में जो है लहू बहता चला गया, और स्यालनी तीन दिन तक उनके भक्षण करती रही पैरों का, फिर भी वे आत्म ध्यान में लीन है। इससे अच्छा उदाहरण मन के हारे हार और मन के जीते जीत का क्या हो सकता है, कि जिसने एक बार अपने मन को जीत लिया अब उसको कोई दुनिया भी जो है नहीं बदल पाती। और जब तक मन हारा हुआ था तब तक शरीर में शक्ति होते हुए भी कुछ नहीं कर रहे थे। अपने अंदर तो देख लो 365 दिन में 10 दिन पर्युषण के आते हैं तो क्या क्या बातें करने का मन होता, जे भी छोड़ देंगे, हम एक आसन करके देखेंगे, हम ऐसा करके देखेंगे, ये शक्ति कहां से आ गई, अभी तक क्यों नहीं थी। उसमें लिखा विनोबा भावे ने कि अरे ये जुलाई और अगस्त में इन बच्चों की बुद्धि को क्या हो जाता है, इनकी बुद्धि उस समय पढ़ने में नहीं लगती, और जहां मार्च अप्रैल आता है ये बहुत तेजी से पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, क्या अब क्या जुलाई और अगस्त में या सितंबर में इनके पास बुद्धि नहीं थी, थी तो, लेकिन उस समय इनके सामने लक्ष्य सामने नहीं था, और लक्ष्य की प्राप्ति का जो है उनके इसलिए मन में भाव ही नहीं था। और जब उनने देखा कि अब तो बिल्कुल सिर पे ही आ गई पढ़ाई, तो उनके सब एंटीना वेंटीना खुल जाते हैं, इसमें दिमाग के सब एकदम सीधा पढ़ना है ना, एंटीना खुल जाता दिमाग में भी रहता एंटीना, तो वो सब ग्रॉस करने लगता है उससे। तो ऐसे ही है मन के हारे हार, ठीक लिखा हुआ जिसने भी लिखा है, ये पहले लोग अनुभव करके लिखते थे ऐसी कहावतें, जैसे बोध वाक्य हैं ये, जैसे बोध कथाएं होती हैं। आधुनिकता के इस दौर में परस्पर अविश्वास क्यों बढ़ता जा रहा है? परस्पर अविश्वास बढ़ने का कारण स्वार्थ है, और कोई वजह नहीं समझ में आती है। देखिए, हमारे और आपके बीच एक अच्छा बातचीत का संबंध है, और जिस दिन हमारे मन में स्वार्थ आ जाएगा या आपके मन में स्वार्थ आ जाएगा, मामला ठप हो जाएगा। फिर संबंध रहते तो हैं, लेकिन उनमें वैसा आनंद नहीं आता है जहां स्वार्थ है कि इनसे मुझे ये चीज प्राप्त होगी और सामने वाला सोचे कि मुझे भी ये चीज प्राप्त होगी। अब मजा यह है कि अगर उस व्यक्ति से वो चीज प्राप्त नहीं होगी तो भी संबंध टूट जाएगा, और अगर वो प्राप्त हो जाएगी तो प्राप्त हो गई आपका, अब तुम संबंध तोड़ो, काम सटो, दुख विसरो, जो भाव है परी से खाम उठा के फिरा दे। ऐसा उसमें आता है, उसका क्या बोलते हैं उसको,
मड़वा,
तो उसको उठा के फेंक दिया, अपने अपना काम सट गया, अब कोई काम का नहीं वो। ऐसा ही अगर हम जैसे वस्तुओं के प्रति ऐसा स्वार्थ भाव रखते हैं, ऐसे व्यक्ति के प्रति रखने लगे, तो फिर उसमें विश्वास कहां शेष रह जाएगा। हर व्यक्ति यही सोचेगा, अरे पता नहीं इनका क्या उद्देश्य है, हमसे इतनी बढ़िया से बात कर रहे हैं, मतलब इनका कोई ना कोई हमसे स्वार्थ होएगा। देखना, ऐसा मन में आ जाए, आ जाता अपन के, भले अपन किसी की मदद करें, कुछ किसी के लिए अच्छा करें, तो भी उसके मन में सहसा विश्वास होता कि ये सचमुच हमारे हित के लिए कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका कोई ना कोई अपना स्वार्थ हो गए। ऐसा क्यों आ जाता, ये अविश्वास तो है। स्वार्थ से अविश्वास जागृत होता है, स्वार्थ की वजह से विश्वास टूट जाता है। इसलिए अपने यहां लिखा अपेत कैत वा, वात्सल्य अगर रखना है साधर्मी के प्रति तो बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी छल कपट के ही रखना चाहिए, तब वो